सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं जय धवलंगते णाऊरियसयलभुवनभवनगणो केवलनाणशरीरो अणंजनो नामो चंदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री महावीर भगवान के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। ये जो पहली पुस्तक पहला अधिकार पेज्य दोष विहत्ति नाम का, उसमें हम पृष्ठ संख्या 86 पर आ गए हैं। 12 अंगों की कैसी कैसी रचना है उसकी बात यहाँ चल रही है। पद किसे कहना, प्रमाण पद, मध्यम पद, अर्थ पद किसे कहना, उसकी विस्तार से कल चर्चा हुई थी। अब यहाँ 77 नंबर जो जयधवला का जो है उसको हम पढ़ेंगे। कौन से अधिकार में कितने पद है उसकी संख्या हम देख रहे थे। दृष्टिवाद के सूत्र नामक दूसरे अर्थाधिकार में कल हमने देखा था, दृष्टिवाद के 5 अर्थाधिकार है, उसमें परिकर्म सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका। परिकर्म में जो चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति आदि, उसकी बात हमने उसकी संख्या देखी थी। अब यहाँ जो दूसरा अर्थाधिकार है उसका नाम है सूत्र, उसमें 88 लाख पद हैं। दृष्टिवाद के तीसरे अर्थाधिकार प्रथमान योग में 5000 पद है। दृष्टिवाद के चौथे अर्थाधिकार पूर्वगत में 95,50,00,000 और 5 पद है। हाँ, पूर्वगत है ने 14 पूर्व, तो 14 पूर्व में ये हम 108 करोड़ जो पद कहते हैं। दृष्टिवाद में, पूरे दृष्टिवाद में कितने हैं उसकी बात है, ये अकेले 14 पूर्वों में कितने हैं वो बात है। नहीं, मुझे क्या कहना है, दृष्टिवाद अंग जो पूरा अंग है, ये पांचों जो अधिकार है उसको मिलकर उसके पद कितने हैं, अकेले दृष्टिवाद अंग के पद कितने हैं कल हमने देखा था, 108 करोड़ 68,56,005, इसी के पृष्ठ के पहली लाइन में है। और ये अकेले 14 पूर्वों की टोटल संख्या है। दृष्टिवाद के पांचवे अर्थाधिकार चूलिका में 10,49,46,000 पद हैं। उस चूलिका के जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता, ये 5 अर्थाधिकार हैं। इन सब में समान समान पद है। अभी तक तो हमने अलग अलग संख्या देखी थी, ये पांचों में समान है और पांचों के मिलकर अभी हमने जो यहाँ संख्या देखी, हाँ 10,49,00,000 वगैरह, उनमें से जलगता में 2,09,89,200 पद है। स्थलगता में जलगता के समान ही पद होते हैं, मायागता में भी इतने ही पद होते हैं, रूपगता में भी इतने ही पद होते हैं और आकाशगता में भी इतने ही, अर्थात ये जो अभी हमने देखे थे 2,09,89,200 पद होते हैं। सबकी संख्या समान है पांचों ही ये चूलिका की। अभी पूर्वगत के 14 भेद यहाँ बताएंगे। पूर्वगत के जिसको हम 14 पूर्व कहते हैं उसके ये 14 भेद यहाँ बता रहे हैं। पूर्वगत के 14 अर्थाधिकार हैं। उनमें से उत्पाद पूर्व में ये पहला पूर्व 1 करोड़ पद है, अग्रायणी पूर्व में 96 लाख पद है, वीर्यानु प्रवाद पूर्व में 70 लाख पद है, अस्थिनास्ति प्रवाद पूर्व में 60 लाख पद है, ज्ञान प्रवाद पूर्व में 1.1 करोड़ पद है। जिसमें से उन्होंने बताया था ना, ज्ञान प्रवाद से कौन सी वस्तु में से, 10वीं वस्तु में से तीसरा जो पेज प्रावृत है उसमें से ये निकला है। सत्य प्रवाद पूर्व में 1.6 करोड़ पद है, आत्म प्रवाद पूर्व में 26 करोड़ पद है, कर्म प्रवाद पूर्व में 1.80 करोड़ पद है, प्रत्याख्यान पूर्व में 84 लाख पद है, विद्यानुवाद पूर्व में 1.10 करोड़ पद है, कल्याण प्रवाद पूर्व में 26 करोड़ पद है, प्राणावाय पूर्व में 13 करोड़ पद है, क्रिया विशाल पूर्व में भी 9 करोड़ पद है, लोक बिंदु सार पूर्व में 12.50 करोड़ पद है। इस प्रकार सामान्य रूप से पदों के प्रमाण का प्ररूपण किया। एक पद में अक्षर कितने ने, वो तो पूरे श्रुत ज्ञान के अक्षर इकट्ठे में एक कम 1634.83,07,888 इतने एक पद में अक्षर, और इतने इतने अभी जो हमने पदों की संख्या देखी थी, एक एक शास्त्र में कितने पद है। अब प्रकृत कषाय प्रावृत के पदों का प्रमाण कहते हैं, वह इस प्रकार है। कषाय प्रावृत में 16,000 पद हैं। इस कषाय प्रावृत की गुणधर आचार्य के मुख कमल से निकली हुई उपसंहार रूप गाथाएं 233 हैं। क्योंकि जो मूल कषाय प्रावृत या पेज दोष प्रावृत है नहीं, उस वो तो बहुत 16,000 ऐसा कुछ उसमें हमने देखा था ना मूल, हाँ उसमें नहीं 180 तो अभी इसी में है, इन्होंने ही बनाए और उसी को 133 भी कहा है। ये जो हमने कल मूल में कितने पद होते हैं वो बात हमने कल पढ़ी थी, 16,000 ऐसे कुछ किस में, पेज दोष में 16,000 पद, देखो 80 पेज पर है। हाँ अभी हमें यहाँ भी पढ़ा कषाय प्रावृत में 16,000 पद है। ये मूल कषाय प्रावृत की बात है, 16,000 पद की बात जो है ना, जो पेज पाहुड़ जो है मूल में उसकी बात है। ज्ञान प्रवाद के 10वीं वस्तु में ये मूल कषाय प्रावृत की बात है। कषाय प्रावृत दो है ना, एक तो उसके उपसंहार रूप और एक ओरिजिनल, दोनों का नाम तो वही है। अब इस कषाय प्रावृत यानी जो ओरिजिनल मूल कषाय प्रावृत है उसकी गुणधर आचार्य के मुख कमल से निकली हुई उपसंहार रूप गाथा है 233 है। यति ऋषभ आचार्य के मुखारविंद से निकले हुए चूर्णी सूत्र प्रमाण पद से उत्पन्न हुए ग्रंथ के प्रमाण से, देखो प्रमाण से उत्पन्न हुए ग्रंथ, ये ग्रंथ किसको कहना नहीं, ये प्रमाण पद से जो श्लोक होता है उसको ग्रंथ कहा था, कल हमने पढ़ा था, निकाल उसको ग्रंथ अथवा श्लोक कहते ऐसा लिखा था। हाँ 82 पेज पर नीचे से, हाँ नीचे से तीसरी लाइन, 4 प्रमाण पदों का एक ग्रंथ अर्थात श्लोक होता है। ये कल तो विस्तार से बात हुई थी अपनी, और इस प्रमाण पद के द्वारा 14 अंगर बाह्य रूप सामायिक आदि प्रकीर्णक। अब 19
उसके आधार से यहाँ अभी संख्या बताएंगे। ऐसे प्रमाण पद से जो ग्रंथ होते हैं वो कितने हो गए या श्लोक कितने हो गए उसकी बात करते हैं। देखो ये ग्रंथ शब्द आया था ना 82 पेज पर। हाँ उसी को कहा अर्थात लिखा ना, ग्रंथ कहो अर्थात श्लोक कहा। देखो प्रमाण पद से उत्पन्न हुए ग्रंथ के प्रमाण से अर्थात 32 अक्षर के एक श्लोक के प्रमाण से 6000 प्रमाण है। छह हजार श्लोक 32 अक्षर का एक श्लोक इस प्रमाण से एक प्रमाण पद। अब यहाँ जो गाथा हमने पढ़ी है वो जो गाथा अभी हमने जो एक नंबर की गाथा पढ़ी थी याद है ना, निकालो उसमें कितने शब्द थे। नहीं नहीं हाँ शुरू में 9 नंबर पर पेज नंबर 9 वहां पहली लाइन में 20 अक्षर है। और दूसरे में भी 20 है तभी 16 लेंगे हम यानी 32 लेंगे। 20 दुनी 40 हो गए नहीं, इस गाथा में तो 40 अक्षर हो गए हैं। उसमें से 8 देखो देखो ऊपर प्राकृत में मूल गाथा वत्थुम्मी करना पहली लाइन में, आप शायद नहीं थे उस दिन। पहली लाइन में व अक्षर डालना, पूवम्मी पंचमम्मी दु दसमे वत्थुम्मी चाहिए वस्तु में और वो मी डबल म करना वस्तुम्मी। हाँ डबल म तो वहां यदि हम 32 ही काउंट करेंगे तो एक श्लोक हो जाएगा। हाँ इसीलिए हमको तो कितने श्लोक प्रमाण, तो ये ग्रंथ का जो प्रमाण बतलाते अभी यहाँ वही बात बता रहे। देखो फिर निकालना अपना पेज 88 पेज 88 पेज क्या कहते हैं। देखो मूल जो ओरिजिनल ज्ञान प्रवाद से जो कषाय प्रावृत निकला है उसमें तो 16000 पद, ये 16000 पदों में पद की संख्या कितनी है एक पद की अक्षरों की, वहाँ 1634। हाँ और अभी जो बता रहे हैं कि उस पर 233 गाथाएं बनाई है और चूर्णी सूत्रकार ने उसके ऊपर चूर्णी सूत्र की बात बता रहे, सॉरी मैंने उसके काउंट किए, चूर्णी सूत्र हमको काउंट करना था। ये चूर्णी सूत्र कहाँ से शुरू हुए वही पेज नंबर निकालना 9। उसके बाद सूत्र चालू हुए होंगे जहां से फ्लावर जैसे साइंस है 11 नंबर। श्लोक नहीं है वे सूत्र है, चूर्णी सूत्र है। देखो ऊपर प्राकृत में देखो नाणप पवादस जहां जहां ये फूल जैसी साइन है वो चूर्णी सूत्र है। अब ये पहले सूत्र में कितने सारे अक्षर है देखो काउंट करो आप 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो पहले में है। अभी कितने हो सकते हैं ना क्योंकि वो वाक्य है तो वाक्यों में अक्षर भी कितने भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी इसके आगे कोई दूसरा अभी हम सूत्र निकाल के देखेंगे 85। अब देखो 14 पृष्ठ पर एक चूर्णी सूत्र है जिसको नहीं वो तो 11 नंबर चूर्णी सूत्र नहीं, वो तो गलती से वो साइन पड़ी है वहां, वो हमने सुधारा था उस साइन को। अब उसके आगे वाला जो सूत्र है जहाँ फ्लावर की साइन होगी देखो 24 नंबर पर पेज नंबर 24 वहां कहा था अनुपूवी तिविहा, ये भी चूर्णी सूत्र है। अभी इसमें कितने अक्षर है 7 है। अभी जहां जितने अक्षर आए हो उन सभी अक्षरों को काउंट करके उनको हम श्लोकों का प्रमाण बताएंगे। तो 32 से डिवाइड करना, जे टोटल टोटल जितनी संख्या आएगी उसको 32 से भाग देंगे हम, हाँ तो उसकी संख्या होगी 6000 श्लोक, 6000 ग्रंथ भी कहा उसको। ये स्वामी जी हमेशा कहते थे 54000 झाझेरा श्लोक छे, ये झाझेरा श्लोक का झाझेरा श्लोक का अर्थ ये यहाँ, क्योंकि 32 अक्षर का एक श्लोक। देखो पहले ग्रंथ अगर आप कोई मोक्षमार्ग प्रकाशक आदि जो अभी अभी हिंदी में लिखे हुए जो या ढूंढारी में लिखे हुए, वहाँ लिखने की पद्धति एक के आगे एक बिल्कुल, बीच में कोई पैराग्राफ वगैरह ऐसे नहीं, एक सिंगल लाइन में, तो एक एक लाइन में इतने अक्षर होते थे और फिर वो अक्षरों को काउंट यानी लाइन्स काउंट करेंगे तो उतने अक्षरों की संख्या हो जाती थी। तो इतने प्रमाण श्लोक हमें ऐसा लगता है ये तो गद्य है, इसमें श्लोक कैसे काउंट कर रहे हैं, तो ये अर्थ उसका होता है। 32 अक्षरों का एक श्लोक कहेंगे, उसी को एक श्लोक का दूसरा शब्द क्या हमने पढ़ा, ग्रंथ। ग्रंथ यानी पूरा ग्रंथ, पूरा शास्त्र, वो अर्थ नहीं यहाँ पर है। फिर पढ़ती हूँ मैं इसको सेकंड लाइन में, देखो गुणधर आचार्य ने तो ये 233 तो उनकी गाथाएं जो है वो बनाई, यति वृषभ आचार्य ने चूर्णी सूत्र बनाए, ये तो गद्यात्मक है। तो कहते प्रमाण पद से उत्पन्न हुए ग्रंथ के प्रमाण से, प्रमाण पद से ग्रंथ होता है, कितने प्रमाण पदों का एक ग्रंथ होता है, नहीं हाँ अक्षरों का, 32 तो अक्षर है, प्रमाण पद कितने हो गए, 4, क्योंकि एक प्रमाण पद 8 अक्षरों का है, 8 अक्षरों का एक प्रमाण पद। देवेंद्र जी समझ में आ रहा है, नमः समय साराय कितने अक्षर हुए, 8-8 अक्षर है ना, नमः समय साराय 8 का एक वो प्रमाण पद हुआ, ऐसे वो एक श्लोक में कितने हैं, अनुष्टुप छंद में कितने होते हैं, तो 4 है, 8 × 32 होते हाँ। तो 32 अक्षरों को एक ग्रंथ कहो या एक श्लोक कहो एक ही बात है, अर्थात 32 अक्षर के एक श्लोक के प्रमाण से ऐसे कितने श्लोक है, तो कहते 6000 प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने तो सूत्र बनाए, उसमें तो प्रत्येक सूत्र में अक्षरों की संख्या अलग अलग है, फिर भी कितने अक्षर प्रमाण पूरा उनका जो चूर्णी सूत्र है, तो उसको कहेंगे 6000 श्लोक प्रमाण है। ख्याल में आए काउंट कैसे करना, प्रत्येक अंग और पूर्व अक्षर पद संघात और प्रतिपत्ति की अपेक्षा संख्यात है, परंतु अर्थ की अपेक्षा सभी अनंत है। क्या कहते हैं, अक्षरों की संख्या गिनते हैं ना, अक्षर ज्ञान, एक फिर अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, पांच अक्षर, ऐसे कहते करते जब 1634,83,07,888 अक्षर पूरे हो जाएंगे तब हम कहेंगे एक पद है। एक पद के आगे पद में जितने हैं ना 1634 अमुख, फिर पद प्लस एक अक्षर, पद और दूसरा अक्षर, पद और तीसरा अक्षर, पद और चौथा अक्षर, जब पद दुगुना नहीं होता है हाँ तो फिर दो गुना हो जाएगा पद, फिर एक एक अक्षर से बढ़ते हुए पद तीन गुना, तीन पद हो जाएंगे, फिर एक एक अक्षर बढ़ते हुए चार पद हो जाएंगे, फिर एक एक अक्षर बढ़ते हुए पांच पद हो जाएंगे, ऐसे संख्या 1000 पद होते हैं तब जाकर एक संघात नाम का श्रुत ज्ञान होगा। जब तक संघात नहीं होता एक एक अक्षर से बढ़ते हुए पदों के आगे, अक्षर से लेकर पद तक कितने विभाग है, ये 1634 करोड़ वगैरह वगैरह, एक एक से बढ़ते हैं अक्षर, एक एक से बढ़ेंगे पद, एक एक से बढ़ते 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 दो पद, चार पद, दस पद, ऐसे होते होते 1000 हो जाएगी, तब जाके संघात नाम का ज्ञान कहलाएगा। तो यहाँ क्या लिखते देखो, हाँ उस तब तक उसको पद समास ज्ञान कहेंगे, किसी को 1,00,000 अक्षरों का ज्ञान हम कहेंगे, ये पद के आगे वाला पद, पद प्लस 1,00,000 अक्षर, तो क्या कहेंगे उसको, पद समास, पद प्लस 2,00,000 या 4 पद संबंधी ज्ञान है या 10 पद का ज्ञान है, वो भी पद संघात सॉरी पद समास वाला ज्ञान कहलाएगा। ख्याल में आते हैं, जैसे पर्याय पर्याय समास, अक्षर और अक्षर समास, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, अब किसी को लाख अक्षरों संबंधी ज्ञान है तो उसको क्या कहेंगे? अक्षर समास कहेंगे। जब तक पद नहीं होता है तब तक बीच वाले सभी जो भेद है उसको कहेंगे अक्षर समास। एक पद से लेकर फिर आगे जब तक संघात में एक अक्षर कम है, संख्यात हजार पदों का एक संघात होता है, तो तब तक सारे क्या कहलाएंगे? पद समास। ऐसे संख्यात हजार संघात हो जाएंगे। संघात के बाद फिर एक एक अक्षर ही बढ़ाना हो, यानी संघात प्लस एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, फिर संघात प्लस एक पद, संघात प्लस दो पद, संघात प्लस तीन पद, ऐसे संघात दो गुना हुआ, संघात चार गुना हुआ, संघात पांच गुना हुआ, ऐसे संख्यात हजार संघात हो जाने पर ये आगे वाले प्रतिपत्ति वगैरह आगे आगे के भेद समझना। अभी ये सारे जो है कितने भी अक्षर क्यों न बढ़े, वो संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत है? संख्यात है ना, हमने तो टोटल अक्षर ही देखे पनट्टी माइनस एक, तो कितने भी क्यों ना बढ़े आगे हम जाएंगे, वो सारे अक्षर जो है वो संख्यात है। फिर पढ़ते देखो, प्रत्येक अंग और पूर्व, अंग कितना बड़ा है तो कहेंगे अक्षरों की अपेक्षा, पदों की अपेक्षा, संघातों की अपेक्षा, यानी एक अंग में कितने अक्षर है, एक अंग में कितने पद है, एक अंग में कितने संघात है अगर पूछेंगे, एक अंग में कितने प्रतिपत्तिक है, कितने प्रावृत है, कितने प्रावृत प्रावृत है, कितनी वस्तुएं हैं, तो क्या कहेंगे हम? संख्यात है। जैसे हमने अभी देखा ना, बारहवें अंग में पूर्व चौदह है और एक एक अभी हमने ज्ञान प्रवाद पूर्व है उसमें वस्तु कितनी है, तो बारह वस्तु है, उसमें से दसवीं वस्तु में से ये निकला है माल, तो लिमिटेड है संख्यात, यानी काउंटेबल है, उसको हम क्या कहेंगे? संख्यात है। तो अक्षर पद संघात आदि की अपेक्षा श्रुत ज्ञान कितना है तो संख्यात है। इसका अर्थ ख्याल में है? फिर पढ़ती हूं मैं, प्रत्येक अंग और पूर्व, अक्षर पद संघात और प्रतिपत्ति की अपेक्षा संख्यात है। यह प्रतिपत्ति किसको कहना? संघातों का समूह, उसको प्रतिपत्ति कहेंगे। फिर उसके आगे वाला जो भेद है उसको अनुयोग कहेंगे, इतने इतने अनुयोगों, चार अनुयोगों का, फिर वो प्रावृतक प्रावृतक हो जाएगा। इस तरह से आगे आगे वाले भेद है, परंतु वो है तो संख्यात है, परंतु अर्थ की अपेक्षा सभी अनंत है। शब्द तो लिमिटेड है, परंतु उन शब्दों द्वारा जो अर्थ कहने में आता है वो अनंत है, उसका भाव अनंत है। भाव, उसका भाव जो है, शब्द जिसको बता रहे हैं वो, उस शब्दों का विषय वो अनंत है। हाँ, 83 पृष्ठ पर हमने पढ़ा था ना इसको, देखो। हाँ, अनुष्टुप श्लोक 32 अक्षरों का होता है, उसमें चार पद माने गए हैं, ये तो हमने कल देखी थी। तो दूसरे जो छंद होते हैं उसमें 32 से ज्यादा भी अक्षर हो जाते हैं, ये शार्दुल विक्रीडित है तो उसमें अलग होते हैं। हाँ, ये हम अपनी हो गई थी विस्तार से बात। फिर भी ग्रंथ को कितने श्लोक प्रमाण है, तो ये 32 वाला प्रमाण लगाएंगे, 32 अक्षरों का एक श्लोक और उस प्रमाण में कितने श्लोक है वो कहेंगे। हमने कितना देखा चूर्णी सूत्र? 6000 श्लोक प्रमाण। देखो, यदि अर्थ की अपेक्षा सभी अनंत न माने जाए तो संख्यात पदों के द्वारा अनंत अर्थों का कथन नहीं बन सकता। शब्द तो संख्यात है और उसका अर्थ तो अनंत है, तथा इन पदों से जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान प्रमाण है।
₹233
है। नहीं, गणधरों ने तो 16000 पद प्रमाण, और वो जो पद है वो मध्यम पद है। 16000 पद जो कहे ना, मूल पेज दोष प्रावृत जो है, ज्ञान प्रवाद के दसवीं वस्तु के तीसरे जो पेज प्रावृत या कषाय प्रावृत है उसमें, हाँ वो गंधर ने रची हुई है, उसमें 16000 मध्यम पद है। उसमें से देखो, इतने बड़े में से 233 गाथाओं में उन्होंने वो सारा माल भर दिया। नहीं 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 वो गुणधर, गणधर अलग, गणधर तो गणधर जो सभी के गणधर होते हैं, और इनका नाम गुणधर था, गुणधर। देखो हम जब मंगलाचरण कहते हैं उनको गुणधर भट्टारक भी कहा है, वे गणधर नहीं थे। ये तो हमने देखा था ना, उनको तो कितने अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान अवेलेबल था। 683 वर्ष के बाद हुए थे वो महावीर के पश्चात। कल हमने पूरी परंपरा देखी थी आचार्यों की, पहले श्रुत केवली कितने थे, फिर बाद में कितने अंगोधारी पूर्वधारी आदि आदि थे। तो गुणधर भट्टारक ने उसमें से, यानी वो मूल तभी चला आ रहा था, पेज दोष प्रावृत तभी अवेलेबल था उनके सामने। वो 16,000 पदों में से उन्होंने 233 गाथाएं बनाई, वहां लिखा था ना, वो विस्तार इतना था 16,000 पदों का, तो काल दोष से वो तो नष्ट होने वाला था, इसलिए उसको 233 गाथाओं में, कि जो फिर याद हो सके और फिर आगे की पीढ़ी को या आगे के आचार्य परंपरा को सिखा सके, इसलिए उन्होंने 233 गाथाएं बनाई उसमें से। क्या कहते हैं देखो लास्ट लाइन क्या, इन पदों से जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान प्रमाण है। ये प्रमाण की बात हमारी चल रही थी ग्रंथ के शुरू में, पहले में पहले क्रमसर उसकी संख्या बताई जाती है, उसको क्या कहते हैं अनुपूर्वी, फिर नाम का कथन होता है, फिर प्रमाण की बात है। हमने 7 प्रकार के प्रमाण देखे थे, याद है? हाँ, नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, हाँ, संख्या प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण, और ये ज्ञान प्रमाण। तो ज्ञान प्रमाण में मति ज्ञान प्रमाण, श्रुत ज्ञान प्रमाण, ऐसे 5 ज्ञान प्रमाण है, ऐसी बात आई थी उसमें। यहाँ श्रुत ज्ञान प्रमाण की बात हो गई, यानी ये तो जिसको हम द्रव्य श्रुत कहते हैं, श्रुत ज्ञान जिसको उसको को ये जो है ये ज्ञान नहीं है, फिर भी इसको श्रुत द्रव्य श्रुत कहने में आता है। उन अक्षरों को पढ़कर हमें जो ज्ञान होता है वो ज्ञान प्रमाण है, इसलिए वो श्रुत ज्ञान प्रमाण कहा। 5 प्रमाण ज्ञानों में से ये श्रुत ज्ञान प्रमाण की बात आई यहाँ पर। इस प्रकार प्रमाण की प्ररूपणा समाप्त हुई। हमने उपक्रम देखा था 5 प्रकार का, उसमें से अनुपूर्वी हो गई, नाम उपक्रम हुआ और प्रमाण उपक्रम हुआ। ये उपक्रम में से चौथा नंबर चलेगा अभी, वक्तव्यता 3 प्रकार की है, और एक रह गया उपक्रम, अर्थाधिकार। ये उपक्रम नंबर 4 यहां से चलेगा। देखो ऊपर चूर्णी सूत्र है ना, ये फ्लावर जैसे साइन है, ये चूर्णी सूत्र की सूत्र है उसका, ऊपर पढ़ेंगे। वक्तव्यता तिविहा, वक्तव्यता 3 प्रकार की है। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है, स्वसमय वक्तव्यता, परसमय वक्तव्यता और तदुभय वक्तव्यता। इस प्रकार वक्तव्यता 3 प्रकार की है। यह स्वसमय और परसमय क्या होता है? शोभाबेन आपको पता है? हाँ, आत्मानुभूति। और पर समय ने समय दृष्टि जीव स्व समय। हाँ, आप क्या कहते मंदाबेन? अपने में उपयोग व स्व समय। हाँ हाँ, लक्ष्मी बे अलग होगा क्यों? क्योंकि हम पूछ रहे इसलिए। हाँ, यहाँ नहीं लगता है। आप क्या कहते? हाँ नहीं, बोलो अश्विन भाई। स्वसमय ने, स्वसमय ने समय ने शास्त्र आगम ग्रंथ, पर समय ने परमत। स्वमत जैनियों का स्वमत और परमत, इसको स्वसमय और पर समय का, यहाँ क्या कहना है हम देखते हैं। पहले दूसरी एक बात आई थी कि समय से शुद्ध, ऐसा कुछ बात आई थी ना उसमें। देखो हम यहां से पढ़ेंगे, स्व समय वक्तव्यता, ये स्वमत की स्थापना, पर समय की उनके भी मत बताकर वो कैसे दूषित है उसको बता देना, वो परसमय वक्तव्यता है। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पांचवा अधिकार पढ़ा ना हमने, क्या नाम था उसका? विविध मत समीक्षा। हाँ, विविध मत समीक्षा। तो उसमें उनको अन्य मतों के तत्वों का ज्ञान था ना, तभी तो उन्होंने उसको निराकरण भी कर दिया। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं अपने आचार्यों के कि जिसमें अन्य मतों की पूरे डिटेल विस्तार से चर्चा करके फिर उसको वो गलत कैसे वो सिद्ध करते। तो ये परमत वक्तव्यता हो गई, और तदुभय ने दोनों का वक्तव्य करेंगे। तो परमत का वक्तव्य किया है इसलिए वो सच्चा ऐसे थोड़ी है, वो कैसे गलत है उसको बता देते। हमने परसों ये बातें देखी थी, आक्षेपिनी विक्षेपिनी कथाएं होती, कथाएं व्याख्यान की पद्धति। एक तो अपने मत विस्तार से बता देना वो हो गई आक्षेपिनी, और विक्षेपिनी ने अपना मत ने पहले परमत की क्या गलत मान्यता है, यानी उनकी मान्यता कैसी है और वो झूठ कैसी है, कुदेवा का पहले स्वरूप लोग कैसे मानते हैं और फिर वो झूठा कैसा है, इसको सिद्ध करेंगे। वो भी एक पद्धति है ना व्याख्यान की। अब यहां पढ़ेंगे ये स्वसमय वक्तव्यता, परसमय वक्तव्यता और तदुभय वक्तव्यता। इस प्रकार वक्तव्यता तीन प्रकार के, वक्तव्य करना यानी कथन करना, उनमें से श्रुत ज्ञान में तदुभय वक्तव्यता समझना चाहिए। तद उभय यानी दोनों ही, यानी स्वसमय और परसमय दोनों को तद उभय कहते, उभय यानी दोनों, क्योंकि श्रुत ज्ञान में सुनय और दुर्नय इन दोनों की ही प्ररूपणा संभव है। तो क्या श्रुत ज्ञान में दुर्नय भी बताएंगे, दुर्नय का स्वरूप बताएंगे ना? हमारे श्लोकों में क्या, हमारे जो ग्रंथ है उसमें मिथ्यात्व का स्वरूप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हाँ, यानी वो मिथ्यादृष्टि किस तरह से दुर्नय मानता है वो भी बताएंगे, क्योंकि हमें तो दोनों ही पद, ये ऐसा है और ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रकार से सिद्ध भी करना है और समझना भी है। आपको क्या समझना है? अच्छा, आपका कहना ये फुट नोट में क्या लिखा है जरा हम समझना चाहते हैं, ये कहाँ कहाँ उसके रेफरेंसेस आए हैं, ये ग्रंथों के नाम यहाँ बताए हैं। देखो, से किम तम वक्तव्या तिविहा पन्नत्ता, ये वक्तव्यता कितने प्रकार की है, तो तीन प्रकार की है। तम जहा वह इस प्रकार, ससमय वक्तव्या, परसमय वक्तव्या, ससमय परसमय वक्तव्या, यही बात उसी को यहाँ तदुभय कहा है। अब आगे, अध्ययनासु सुत्त सुत्त पगरिन सुत्त गारेण वा इच्छा परु विज्जन्ति सा वक्तव्यता। यानी जो अध्ययन में ये सूत्र के अनुसार सूत्रकार द्वारा या इच्छा द्वारा जो प्ररूपणा होती है उसको वक्तव्यता कहते हैं। तत्र अध्ययनादिशु, इसी को संस्कृत में कहा, पहले प्राकृत में कहा था, वहां अध्ययनादिशु अध्ययन आदि में सूत्र प्रकारेण सूत्र विभागेन देश नियत गंधनम वक्तव्यता। यानी सूत्र प्रकार से और सूत्र विभाग से उसके जो देश नियत गंधनम, गंधनम क्या होता है, नियत गंधनम, गंधनम कुछ शब्द गलती से छपा है, देश नियत गंधनम, गंधनम का अर्थ क्या है? ये वक्तव्यता किसको कहना वो बात है ना। देखो आचार्य कोई व्याख्यान कर रहे हैं तो किस प्रकार से उसके व्याख्यान करते, तो स्वसमय का भी कथन करेंगे, पर समय का निराकरण करेंगे, दोनों का ही कथन करेंगे, तो उसको वक्तव्यता कहते हैं। किस प्रकार व्याख्यान करना उसको वक्तव्यता कहते हैं। ये धवला की भी बात ऐसे ही, अब आगे जो लिखा है ये धवला की भी बात सब पढ़ना है क्या? जम्मी सत्तमी स समयो चेव वन्निज्यदि परुविज्यदि पन्नाविज्यदि तम सत्थम स समयवत्थवम तस्स भावो स समयवत्थवदा। जम्मी यानी जिसमें, सत्थमी स समयो चेव वन्निज्यदि, जिसमें संपूर्णपणे स्व समय का ही कथन होगा, वर्णन होगा, परूपणा होगी, पन्ना विज्जदी यानी उसी की ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगी। तम सत्थम वह सर्व स समय वक्तव्यम, वो स्व समय वक्तव्य है और उसका जो भाव है, एक वक्तव्य और वक्तव्यता, कहते हैं रुजु रुजुता, मृदु मृदुता, वो उसका भाव बताते हैं। तो वक्तव्यता ता लगाने से उसका भाव है, तो अपने ही यानी स्व समय का ही वर्णन करना, उसको स्व समय वक्तव्य वक्तव्य कहेंगे और उसका जो भाव है उसको स्व समय वक्तव्यता कहेंगे। ये धौला की बात है, धौला सम संग्रह। जत्थनम स समये आघ विज्जयी पन्ना विज्जयी परु विज्जयी दंसिज्जयी निदंसिज्जयी वदंसिज्जयी ते से सम स समय वत्तव्या यत्र अध्ययने सूत्रे धर्मास्तिकाय द्रव्यादीनाम आत्म समय स्वरूपेण प्ररूपणा क्रियते तथा गति लक्षणों धर्मास्तिकाय इत्यादि सा स्व समय वक्तव्यता। यही बात फिर दोबारा इन्होंने बता दी है कि जहाँ अलग अलग प्रकार से अपने ही मतों का कथन करना, जैसे उसके लिए उन्होंने यथा इन्हें दृष्टांत रूप से दिया, धर्म द्रव्य का कथन तो अपने स्व समय में ही है, अन्य कोई मति अन्य मतियों में तो धर्म द्रव्य का कथन तो आता ही नहीं है। तो ये जो गति लक्षण धर्मास्तिकाय वगैरह वगैरह जो है स्व समय की बात बताना, उसको स्व समय वक्तव्यता कहते हैं। स्व सिद्धांत आख्यायते यथा पंचास्तिकाया, यानी स्व अपने ही सिद्धांत जहां बताए जाते हैं, जैसे पांच अस्तिकाय द्रव्य है उसका कथन होगा तो ये स्व समय वक्तव्यता हो जाएगी। तद यथा वह इस प्रकार धर्मास्तिकाय इत्यादि, पंचास्तिकाय में एक धर्मास्तिकाय बता दिया, इत्यादि में अन्य भी अस्तिकाय है। कौन कौन से अन्य अस्तिकाय? बोलो लक्ष्मी दे। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। काल अस्थि है पर काय नहीं है, एक प्रदेशी है ना। तथा प्रज्ञाप्यते यथा गति लक्षणों धर्मास्तिकाय इत्यादि, उसका प्रज्ञापन करने ने विशेष ऊपर जो बात आई थी, पहले में पहले अस्थिकाय बताए फिर उनका लक्षण बताएंगे कि गति लक्षण है वो धर्मास्तिकाय का है इत्यादि। तथा प्ररूप्यते उसकी प्ररूपणा करते हैं, कैसे? यथा असौ असंख्य प्रदेशात्मकादि भी, यानी यह असंख्यात प्रदेशी है, धर्मास्तिकाय को लिया ना उदाहरण के तौर पर, तो पहले धर्मास्तिकाय है वो अस्तिकाय में एक धर्मास्तिकाय को बताया, उसका लक्षण क्या है? गति हेतु। तो फिर और उसकी प्ररूपणा क्या करते हैं? यह असंख्यात प्रदेशी है। तथा दर्श्यते, दर्श्यते ने भी दृष्टांत देकर समझाते हैं, कैसे? मत्स्यानाम जलम इत्यादि दर्शित करते ने क्या, अभी दृष्टांत से समझाया कैसे, वो क्या उसके उदाहरण देते हैं मालूम है आपको? धर्म द्रव्य समझाने के लिए उसके उदाहरण, गमन करके हुए मछली को गमन करने में पानी जैसा है, वो स्वयं गमन करती है मछली, वहां भी वो कुएं का जल लिया हो, नदी का नहीं। क्यों? क्योंकि नदी का जल वो बह रहे ना, वो प्रवाह में बहने वाली मछली नहीं ली। आपने कही हो मेरे ख्याल से, इसमें आया है कार्तिकेयन प्रेक्षा में होगा शायद, एक कुएं का जल लिया वो स्थिर है स्वयं और मछली गमन कर रही है, तो उसमें जैसा वो निमित्त होता है स्वयं स्थिर रहते हुए भी, ऐसे धर्मास्तिकाय तो स्वयं ये तो अनादि स्थिर द्रव्य है और वहां स्वयं गमन करने वाले जीव और पुद्गलों को गमन करने में वो निमित्त है, ये हुआ दर्शते तथा निर्दर्शते यथा तथैव एशोपि जीव पुद्गलानाम इति। यानी वो क्या निर्देश करते हैं, किस तरह किसको गमन करने में है, तो जीव और पुद्गलों को। ये धर्मास्तिकाय संबंधी अलग अलग उन्होंने बता दिए। ये सारी जो है वो स्व समय वक्तव्यता कहलाएगी। उन्होंने एक धर्मास्तिकाय पर घटित किया, इसे हर एक पर घटित करेंगे। अभी परसमयों की। परसमयो मिच्छत्तम जम्मी पाहुड़े अणियोगे वा वणिज्यदि पुरुविज्यदि पन्ना विज्यदि तम पाहुड़म अणियोगो वा परसमय वत्तव्यम तस्स भावो परसमय वत्तव्यदा नाम। देखो क्या कहते हैं, पर समय जो मिथ्यात्व है उसका जिस पाहुड़ में जिस अनियोग में उसको वर्णन करते हैं, परूपना करते हैं, और जो हमने अभी दर्शते वगैरह सब उसमें समझना, उस पाहुड़ को या अनुयोग को पर समय वक्तव्य कहते हैं, और उसका जो भाव है उसको पर समय वक्तव्यता कहेंगे। तो पर समय में क्या लेना है, अन्य मतियों की जो मिथ्या मान्यताएं जो है किस प्रकार से है उसका जो कथन है उसको पर समय वक्तव्यता कहेंगे। जत्थनम पर समय आधविज्जयी जाव वदंसिज्जयी से तम पर समय वक्तव्या। यत्र पुनः अध्ययनादिषु जीवद्रव्यादीनाम एकांत ग्राहेण नित्यत्वम अनित्यत्वम वा परसमय स्वरूपेण प्ररूपणा क्रियते। ये जो अन्य एकांतवादी जो है, जीव को सर्वथा नित्य मानने वाले, सर्वथा अनित्य मानने वाले, उन सब का कथन जिसमें होता है वो होता है परसमय वक्तव्यता। देखो समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, जो समय सार गाथा दूसरे में विस्तार से बताए हैं। समय शब्द का अर्थ होता आत्मा भी होता है। समय शब्द का अर्थ पहले में पहले शास्त्र को भी समय कहते, छहों द्रव्यों को भी समय कहते, छहों द्रव्यों में से आत्मद्रव्य जीव द्रव्य को भी समय कहते, आत्मद्रव्य में भी जो दृष्टि का विषय शुद्ध आत्मा उसको भी समय कहते हैं, तो उसको हम स्व समय कहेंगे, और अन्यत्र जो लक्ष्य चला जाता है उसको भी पर समय कहेंगे। तो सम्य दृष्टि को भी उसमें भी स्व समय पर समय उसको कहेंगे, क्यों उसका लक्ष्य उपयोग बाहर चला जाता है। तो वो बात यहाँ नहीं है, अपना विषय अलग चल रहा है ना। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो कहाँ पर कौन सा अर्थ है उसको वहीं से बराबर समझना चाहिए। देखो अभी ये तदु भाई किसको कहना, आगे के पृष्ठ पर जो फुट नोट है, जत्थ दोवी परुवेऊण परसमयो दूषित जदि स समयो थावी जदि। क्या कहते हैं, जहां दोनों प्रकार की प्ररूपणा होती है। 89 पृष्ठ पर फुट नोट, परसमयो दूषित जदि, यानी परसमय को दूषित क्या दिखाता है ना, क्या उसके जो दोष दिखाए जाते हैं, यानी उसका निराकरण किया जाता है या दोष दिखाए जाते हैं। और स समयो थावी जदि, स्व समय की स्थापना की जाती है, स्व मत कैसा ठीक है सिद्ध होता है उसको बताया जाता है। सा तदुभय वक्तव्यदा, वह तदुभय वक्तव्यता है। जत्थनम स समय परिसमय आघविज्जयी जाव वदंसिज्जयी ते सम सेतम स समय परसमय वक्तव्या। यही बात है, सम एको भावी वर्तते तद यथा संगतम घृतम संगतम। ये अलग अलग अर्थ है भी। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये आगे की जो फुटनोट है ना, वो दूसरे नंबर जो है सब्जेक्ट है, सामायिक आदि उसके बारे में है। अभी हमने तीनों ही देखे, स्व समय वक्तव्यता, पर समय वक्तव्यता और तदुभय। तदुभय ने दोनों का कथन करेंगे, परमत का निराकरण और स्वमत की स्थापना। एक ही वाक्य होता है, आचार्यों का एक ही श्लोक होता है, उसी श्लोक में वो दोनों को एक ही शब्द होगा, उसी के द्वारा अपने मत की स्थापना होती है, उसी के द्वारा अन्य मत का निराकरण होता है। जैसे वो कहते हैं ना कि ये जो लोक है वो किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम है, किसी के आधार से नहीं है। तो ये अपने मत की भी स्थापना और परम मत के निराकरण भी है, क्योंकि अन्य मत ये मानते हैं कि लोक है वो किसी ने निर्माण किया है, किसी ने उसका रक्षण किया है, किसी कोई नष्ट करेगा, तो ये लोक है वो तो किसी ने बनाया नहीं है और कभी उसका नाश नहीं होगा, किसी के आधार से नहीं, क्योंकि अन्य मत मानते वो शेषनाग के आधार से रहता है या जो कुछ अन्य मत। तो इस एक ही श्लोक में वो दोनों को ही बताते हैं, तो ये तदुभय हो जाते हैं। दुर्नय ने दुर्नय अन्य दुर्नय ने अन्य खोटी मान्यता कैसी है ये बताना। तो दुर्नय का त्याग करेंगे ना हम, जिनवाणी में आया तो हमको फॉलो करना चाहिए, वो बात नहीं है। जिनमत में तो मिथ्यात्व का भी विस्तार से वर्णन आया है, तो मिथ्यात्व त्यागने योग्य है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हमने कितनी बात देखी, एक तो स्थूल तो बात बताई बताई चौथे अधिकार में, सातवें अधिकार में स्थूल मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है कहकर उसके भी कितनी सूक्ष्मता से वर्णन किया। तो मिथ्यात्व का वर्णन पहले क्यों किया, पहले सम्यक दर्शन का बताना था ना कि अनादि से जी उसी में उलझा हुआ है और उसकी मान्यता कहाँ कहाँ कैसी चलती है, उसका कितना उन्होंने यानी लौकिक में भी उनका ऑब्जर्वेशन कितना था, तभी उन्होंने इतनी सूक्ष्मता से वर्णन किया टोडरमल जी ने। तो ये परसमय की भी वहां स्थापना नहीं उनकी, उनका तो मत बताकर वो दूषित कैसा है, दोष कैसे है उसको बताना है, क्योंकि जब ही सम्यक तो नहीं तो अभिप्राय में कहीं ना कहीं ऐसे दोष छिपे हुए हैं। भले सामने जैन शिष्य है, आचार्यों ने भी जो ग्रंथों की रचना की है, तो शिष्यों को भी कभी कभी कहते हैं ये सांख्यमती, क्यों वो सांख्यमती होता तो थोड़ी दिगंबर जी ने दीक्षा ले लेता, तो उनकी मान्यता में कोई वहां दोष है तो वो बताने के लिए ऐसा भी कहते वहां पर।
यहां दुर्नय किसको कहना, तो जो एकांतवादी है, क्योंकि नये तो वही होते जो अपेक्षा सहित होते हैं, तो इसलिए वो जो अन्य मति है वो तो एकांत यानी सर्वथा ऐसा ही स्वरूप है ऐसा मानते हैं, तो इसलिए उनको दुर्नय कहने में आया।
जितने नए है उतने नयवाद है ऐसा वाक्य आया है गमड़ सार में। जैसे अभी हम दो नए की बात करते हैं, नए ने अभी किसी अपेक्षा से कहे ना, निरपेक्ष नया मिथ्या, जिसको जो अन्य जो हम परस्पर विरोधी धर्म जिसको धर्म युगल कहते हैं, तो उसमें नित्य अनित्य की बात करेंगे, तो स्यात नित्य और स्यात अनित्य ऐसा वस्तु का स्वरूप है। स्यात यानी किसी अपेक्षा नित्य है और किसी अपेक्षा अनित्य है, ये तो दो नए हमने देखे, तो इसमें से दो नए वाद हो गए, जिसको कहते एकांतवाद। सर्वथा वाद यानी कथन, तो कोई ऐसे मानते कि वस्तु सर्वथा नित्य ही है, वो अपेक्षा की बात ही नहीं करते, और कोई क्या मानते सर्वथा अनित्य क्षणिक है, तो ये दोनों ही दुर्नय हो गए। और सुनय कौन से, स्यात नित्य स्यात अनित्य, स्यात में वो अपेक्षा है गर्भित, ये बात सिद्ध होती है। जरूरी नहीं कि हर अपेक्षा वो द्रव्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय की अपेक्षा नित्य, वो अपेक्षा हर समय बताएंगे ये बात नहीं। जिन आचार्य जैनाचार्यों का मत है वो उनका कथन है, वो तो स्यादवाद से मुद्रित ही होता है। तो कहीं कहीं स्यात ऐसा शब्द भी नहीं लगाएंगे तो भी उन्हें वहां गर्भित है ऐसा समझना। वो तो सुनयों में ही नयोम की बात होती है, तो उनके अन्य जो विरोधी धर्म है उसकी भी सत्ता का स्वीकार है। देखो समय सार आदि में बार बार वो त्रिकाली शुद्धात्मा की बात आती है, तो क्या पर्याय रहित है जीव द्रव्य, उसको गौण किया है पहले समझने के लिए, दोनों ओर से बिल्कुल अच्छी तरह से समझा है गुण पर्यायात्मक द्रव्य को समझकर, फिर भेदों को गौण करके अभेद की दृष्टि कराई जाती है, वो नए की बात होती है वहां पर। तो वहां भी अन्य जो हमने जिसको गौण किया है उसका स्वीकार है, तभी तो उसको हम सच्चे नए कहेंगे, नहीं तो वो मिथ्या हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा त्रिकालीय शुद्ध है बुद्ध है ज्ञाता दृष्टा है कहने वाले अन्य भी वैष्णवादी अन्य भी ऐसा ही कहते हैं, जो हम शुद्ध नहीं से कहते वो सर्वथा वैसा कहते हैं, तो उनका तो आपके लोग क्या कहेंगे, या हमारा खोटा और आपका सच्चा। उतना ही अगर हम पढ़ेंगे और समय सार में भी वैसा ही शुद्ध नहीं का कथन पढ़ेंगे तो दोनों का कथन समान भाषित होता है। इसीलिए अज्ञानी क्या कहते हैं, अरे सभी मत ऐसा ही कहते हैं, हमारे भी मत में ऐसा ही है। तो ये यहां समझ में, ये वक्तव्यता तीन प्रकार की हमने देखी, उसमें भी जो अंग बाह्य श्रुत ज्ञान है वह स्व समय का ही प्ररूपण करता है। देखो अंग बाह्य में हमने वो सामयिक आदि जो बातें देखी ना, चतुर्विंशति स्तव, आगे उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। देखो कितने विस्तार से बातें बताई हैं। ये सामयिक नाम का जो पहला जो है प्रकीर्णक कहते हैं, या अंग बाह्य श्रुत के ये 14 भेद है। द्रव्य सामयिक, क्षेत्र सामयिक, काल सामयिक, भाव सामयिक के भेद से सामयिक 4 प्रकार के हैं। उनमें से सचित्त और अचित्त द्रव्यों में राग और द्वेष का निरोध करना, ये ध बराबर है क्या, द्रव्य सामयिक है। ये राग द्वेष का निरोध वह सामयिक है, समभाव, समता का आय यानी प्राप्ति। ग्राम, नगर, खेट, करवट, मंडव चाहिए, मड़ौवा ही ऊपर मड़ौवा लिखा है, ठीक है, मड़ौवा, पट्टन, द्रोणमुख और जनपद आदि में। ये तो अलग अलग नाम, जैसे हम कहते हैं गली है, मोहल्ला है, हम यहाँ पर कहेंगे तो सबर्ब्स है, फिर ये बड़ा शहर है, नगर है, ये ऐसे अलग अलग पूर्व काल में ऐसे नाम होते थे ना। धौला में हमने इसके विस्तार से नाम भी देखे थे, या शायद हाँ विशाखापट्टन, ग्राम वगैरह किसको कहना वो हमने पहले देखा भी था। इसमें नीचे शायद दिया होगा, गामा नामा, हाँ नीचे है, हम पढ़ेंगे फिर बाद में, पहले इसको पढ़ लेते। ग्राम, नगर, खेट, करवट, मडौव, पट्टन, त्रोणमुख और जनपद आदि में राग द्वेष का निरोध करना, अथवा अपने निवास स्थान में संपराय अर्थात सांपराय का संपराय, सांपराय चाहिए ना, संपराय निरोह, उन्होंने वही शब्द लाया है, हम हमेशा सांपराय यूज करते हैं। सांपराय अर्थात कषाय का निरोध करना क्षेत्र सामयिक है। हम नीचे जो फुट नोट है उसमें देखेंगे। हाँ हाँ, आप नहीं थी ना। द्रव्य श्रुत जो है उसके 2 भेद हैं, एक होते हैं अंग और दूसरे अंग बाह्य। हमने जो पूर्ण श्रुत के अक्षरों की संख्या कितनी देखी याद है, 31 - 1, और एक एक पद में अक्षरों की संख्या 1634,83,07,088। तो 31 - 1 को इस पद के जो अक्षरों की संख्या है उसको भाग देंगे जो पूर्णांक में जो संख्या आएगी। हमने देखे ना 112 करोड़ और आगे कुछ, ये हाँ 56,005, ये सब 12 अंगों के पदों की संख्या हो जाएगी, यानी पूर्णांक में आ गए। अब कुछ बाकी रहे 8010 ऐसा कुछ आता ना, हाँ हाँ, तो ये इतने अक्षर जो बाकी रहे वो अंग, उसमें से अंग बाह्य नाम के ये 14 प्रकीर्णक बनाए गए, तो उसको कहते हैं अंग बाह्य। जो अंग से अलावा, अंग के अलावा और है उसको अंग बाह्य कहते हैं। 12 अंग प्लस अंग बाह्य सब मिलकर ये सारा द्रव्य श्रुत टोटल है। अब उसमें कहते हैं आगे 14 पूर्व, ये 12वें अंग का भेद है, और ये 14 प्रकीर्णक वो तो 12 ही अंगों के अलावा और जो रचना है उसको 14 प्रकीर्णक कहो या अंग बाह्य श्रुत कहो एक ही बात, उसमें से सामायिक वगैरह जो हमने अभी नाम पहले भी पढ़े थे अभी भी आएगी फिर दोबारा। हाँ, 11 अंग 14 पूर्व, 12 अंग और 14 पूर्व नहीं कहते, 14 पूर्व कहो या 12 अंग कहो एक ही बात है। प्रकरणक का ज्ञान की बात ही नहीं आती उसमें, 11 अंगधारी कहेंगे, एकादश अंगधारी, 11 अंग के आगे पूर्वों का ज्ञान होगा तो कहेंगे नव पूर्व। मिथ्या दृष्टि की अवस्था में 11 अंग और नव पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है और फिर भी मिथ्या दृष्टि रह सकता है, हर एक रहेगा वो बात नहीं है, क्योंकि 12वां अंग पढ़े और मिथ्या दृष्टि रहे वो ये 10 पूर्वधारी जो होंगे वो तो आत्मसात यानी वो उसका सही ग्रहण नहीं होता है। अभी इस काल में कहाँ है पूरे अंगों का वो ज्ञान, पार्शल है, फिर भी उसका जो सही सार है वो समझ सकते हैं ना, जो अभी हमारे समय सार में चल रहा है राग से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति, यानी बस ज्ञान को ही शब्दों के लेवल पर जान लेता है और उसका जो ग्रहण होना है भाव का ग्रहण वो नहीं रहता, इसलिए इतना ज्ञान होने पर भी ऐसा लगता है ना फिर भी मिथ्या दृष्टि कैसा रहा। देखो ये समय का अर्थ, सामायिक का अर्थ जो तीसरे लाइन में फुटनोट में सम एको भावे वर्तते, समभाव कहो या एक का भाव, एको भाव कहो तद यथा वह यथा संगतम ध्रुतम चाहिए, घृतम कहे संगतम ध्रुतम संगतम तैलम इति उच्चते एकीभूतम इति गम्यते, संगतम घृतम घृत ही होगा, एक मिनट, संगतम घृतम संगतम तैलम इति उच्चते एकीभूतम इति गम्यते के गम्यते गम्यते एकेत्वेन अयनम गमनम समयः, समय एव सामायिकम्, समयः प्रयोजनम अस्य इति वा विग्रह्य सामायिकम्। सामायिक के अर्थ उन्होंने अलग अलग बताए, समय को ही सामायिक कहते हैं या समय है जिस प्रयोजन जिसका वह सामायिक है। तत्र समम एकत्वेन आत्मनि आयः आगमनम परद्रव्येभ्यो निवृत्य उपयोगस्य आत्मनि प्रवृत्ति ही समायः, क्या कहते हैं यानी आत्मा में आगमन कैसे परद्रव्यों से निवृत्त उपयोग होकर आत्मा में प्रवृत्ति होना उसको समायः कहा। अयम अहम ज्ञाता दृष्टा चेति आत्म विषय उपयोग इति अर्थम, उसका अर्थ क्या, यह मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूं, इस तरह से आत्मा में आत्मा विषय उपयोग होना उसको सामायिक कहेंगे। आत्मन एकस्यैव ज्ञेय ज्ञायकत्व संभवात, आत्मा में ही एक ज्ञेय ज्ञायक वो वही ज्ञेय और वही ज्ञायक ऐसे संभव है आत्मा में है। अथवा सम समय राग द्वेषाभ्याम अनुपहते मध्यस्थे आत्मनि आयः उपयोगस्य प्रवृत्ति समायः, वही बात बताते कि राग द्वेष की उसका अनुपहते यानी उसका नाश होकर मध्यस्थ होकर आत्मा में जिसके उपयोग की प्रवृत्ति होती है वह समायः कहते हैं। स प्रयोजनम अस्य इति सामायिके, ऐसा जो जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है यानी जिसके द्वारा यह होता है वह सामायिक होता है। नित्य नैमिष्ठिक अनुष्ठानम तत्प्रतिपादकम शास्त्रम वा सामायिकम इति अर्थ, नित्य नैमित्तिक प्रतिष्ठान यानी वो उसकी क्रिया अनुष्ठान जिसको हम कहते हैं नियमित करने योग्य जो क्रिया उसको भी कहेंगे सामायिक, सामायिक की क्रिया, और उसके प्रतिपादक शास्त्र को भी सामायिक कहेंगे। अंग बाह्य श्रुत में सबसे पहला जो प्रकीर्णक है उसका नाम ही है सामायिक, तो सामायिक एक क्रिया हुई और सामायिक का प्रतिपादन जिस शास्त्र में है उस शास्त्र का नाम भी सामायिक, दोनों हो गए, ये गोमरसार जीव कांड में बताया है। यही अलग अलग जो ग्रंथों में क्या क्या बात आई है यही बताया है। उसमें भी सामायिक के तो नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे भी छह भेद करेंगे, निक्षेप छह उसमें भी डालेंगे। यहाँ तो हमने चार प्रकार के देखे। देखो यहाँ नीचे से जरा देखते हैं, नीचे से छठी लाइन उस हाँ उसके ऊपर वो द्रव छह प्रकार कैसे होते उसकी विस्तार से बात की। देखो द्रव्य सामायिकम, द्रव्य सामायिक किसको कहना है? सुवर्ण मृत्तिकादि द्रव्येषु रम्य अरम्येषु समदर्शित्वम, सोना हो या मिट्टी हो उसमें समदर्शित्व, यानी हाँ ये कितना अच्छा है और ये कितना बुरा है, ये तो वो पुद्गल की पर्याय है, तो उसमें जो समभाव है। या दूसरा क्या है, रम्य और अरम्य में कोई वस्तु बहुत अच्छी दिखती है, मनोहर दिखती है, और कोई अमनोहर दिखती है, तो दोनों में जो समभाव है उसको सामायिक कहा। इष्ट अनिष्टेशु चेतन अचेतन द्रव्येषु राग द्वेष निवृत्ति सामायिक शास्त्र अनुपयुक्त न्याय कहा तत्शरीरादि वह द्रव्य सामायिकम। अभी ये तो द्रव्य निक्षेप घटा, यहाँ पर क्या कहते हैं द्रव्य सामायिक किसको कहना? इष्ट अनिष्ट चेतन और अचेतन द्रव्यों में राग द्वेष की निवृत्ति वह सामायिक है, या द्रव्य सामायिक जिसको हम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। हम किसी भी चीज पर द्रव्य निक्षेप लगाते हैं तो दो भेद करते हैं, कौन कौन से याद है? आगम और नो आगम। आगम किसको कहेंगे? अब यहाँ के बारे में आगम द्रव्य सामायिक किसको कहेंगे? सामायिक संबंधी आगम को जानने वाला जीव, उसमें जिसका उपयोग अभी नहीं है उसको हम आगम द्रव्य सामायिक कहेंगे, उस जीव को। नो आगम द्रव्य सामायिक में तीन भेद करेंगे, न्यायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। न्यायक शरीर है उस जानने वाले जीव के शरीर को, उसको भी नो आगम द्रव्य सामायिक कहेंगे। सामायिक संबंधी आगम को जानने वाला जीव, वो अभी जानने वाला है, उसके भूतकाल के शरीर को भी, वर्तमान शरीर को भी, या भविष्य में जो धारण करेगा उन शरीरों को भी कहेंगे नो आगम द्रव्य सामायिक। भावी ने अभी जो वर्तमान में नहीं जान रहा, भविष्य में जो जानने वाला है उस जीव को भी, ये बात यहाँ बताइए। अभी उसके डिटेल में हमें नहीं जाना, यहाँ तो बिल्कुल स्थूल रूप से बात की है। अभी जो हमने खेट नाम ग्राम नगर आदि जो देखा ऊपर, ग्राम तो गांव हमको तो पता है, नगर किसको कहना है? वो पांचवा नंबर नीचे लिखा है, चतुर गोपुरान्वितम नगरम, चार गोपुरों के द्वारा जो शोभित होता है या वेष्टित होता है उसको नगर कहते हैं। खेट सरित पर्वतावरुद्धम खेटम नाम, यानी पर्वतों से जो घेरा हुआ है उसको खेट कहेंगे। सरित यानी नदी, नदी और पर्वतों से जो वेष्टित है। अभी के पंचशत ग्राम परिवारितम मंडवम नाम, पंचशत ग्राम 500 ग्रामों का उसको मंडवम कहेंगे। गावा के बदले नावा, पाद प्रचारे न च यत्र गमनम तत् पत्तनम नाम, यानी जहां चलकर जा सकते हैं यत्र गमनम तत् पत्तनम नाम, उसको पत्तन कहते हैं। विशाखापट्टनम वगैरह आते हैं ना, हाँ, श्रीरंगपट्टन, द्रोणमुख, समुद्र निम्न का समीपस्थम अवतरन नौनिवहम द्रोणमुखम नाम। समुद्र निम्न का, ये नदी जहाँ समुद्र में मिलती है ना, हाँ, उसको द्रोणमुख कहेंगे। देशस एक देशो जनवो नाम, देश के एक देश को, पूरे देश के एक देश प्रांत जिसको कहते हैं कुछ, उसको जनपद कहते हैं। आगे गम्मो गमणिज्जो वा कराण गसय वा बुद्धादि नथेत करो नगरम खेडम पुण होई धूलि पागारम कब्बड़गम तु कुणगरम मड़ं व गंसव्वतो छिन्नम जलपट्टनम च थलपट्टनम च इति पट्टनम दुविहम अयमाई आगारा खलु दोणमुहम उलथ उलथल पहेणम। अभी ये उसी के भेद है सब। हाँ, अलग तरह से बताए। अभी हम आते हैं पृष्ठ संख्या 90 पर। क्षेत्र सामायिक हमने पढ़ लिया। वसंत आदि 6 ऋतु विषय कषाय का निरोध करना। निरोध ध बराबर करो, अर्थात किसी ऋतु में राग द्वेष का न करना काल सामायिक है। गर्मी हो जाती है तो कैसे हम जिसने समस्त कषायों का निरोध कर दिया है तथा मिथ्यात्व का वमन कर दिया है और जो नयों में निपुण है ऐसे जीव को बाधा रहित और अस्खलित जो 6 द्रव्य विषय ज्ञान होता है वह भाव सामायिक है। द्रव्य क्षेत्र काल और ये भाव की बात बताई उन्होंने। अथवा तीनों ही संध्याओं में, ये तीन संध्या कौन सी है, संधि काल जिसको कहते हैं उसको संध्या कहते हैं। हम तो संध्या काल यानी शाम को ही संध्या काल कहते हैं। हाँ, पूर्वान्न मध्यान्न और अपरान्न। कल अपशब्द आया था ना, ये अपराध वाली गाथा चल रही है अभी हमारी समय सार है। अपशब्द से शुरू होने वाले हमने बहुत सारे कल शब्द ढूंढ लेते हैं। हाँ, इसको संध्या ने संधि काल कहते हैं। रात और दिन इनका जो संधि काल है, या दिन और फिर शाम को जो संधि काल है उसको संधि काल कहते हैं या संध्या कहते हैं, और दोपहर को 12 बजे उसको मध्यान्ह कहते हैं। अथवा तीनों ही संध्याओं में या पक्ष और मास के संधि दिनों में, ये दिनों की भी संधि बताई अभी, एक पक्ष के बाद दूसरा पक्ष शुरू हो जाता है तभी, या अपने इच्छित समय में, यानी ऐसे नहीं वही पर उसी समय करना चाहिए ये भी नहीं, या अपने इच्छित समय में बाह्य और अंतरंग समस्त पदार्थों में कषाय का निरोध करना सामयिक है। तो कषाय का निरोध कैसे होगा, जो हम कहे तेरे 80 से कहना है तो आत्मस्वरूप में लीन हो जाना। चूंकि सामायिक नामक प्रकीर्णक इस प्रकार काल का आश्रय करके अथवा भरतादि क्षेत्र सहनन तथा गुणस्थानों का आश्रय करके परिमित और अपरिमित रूप से सामायिक का प्ररूपण करता है, इसलिए सामायिक का वक्तव्य स्वसमय है। सामायिक का वक्तव्य ने सामायिक को बताने वाला जो कथन जो करने वाला जो है, अभी हमने पढ़ा ना, अंग बाह्य जो है वो तो स्वसमय का ही निरूपण करता है। तो उसमें सामायिक का निरूपण करते ने क्या है, एक तो सामायिक का स्वरूप बताएंगे, कौन से कालों में होता है, कब करते हैं वो कहेंगे, और फिर उसमें भी उन्होंने बताया भरतादि क्षेत्र सहनन आदि की अपेक्षा भी कौन से गुणस्थान वाले उनका कितने काल तक क्या होता है ये बातें सब देखते। पांचवे गुणस्थान में भी सामायिक नाम की प्रतिमा है ना, कितने नंबर की है, पांचवे नंबर की। पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा है। तो वहां तो बिल्कुल ऐसा नियम लिया जाता है ना कि मैं दिन में 3 बार सामायिक करूंगा, सामायिक व्रत है वो। तो किस पद्धति से बैठना, किस पद्धति से अरिहंतों को आदि का नमस्कार करके शुरू करने, वो सब जो विधि बताई है वो इस शास्त्र में बताई गई है। विशेषार्थ सामायिक में राग और द्वेष का त्याग करना मुख्य है। परिमित यानी लिमिटेड और अपरिमित यानी अनलिमिटेड, बस उसमें लीन हो जाओ और केवल ज्ञान प्राप्त कर जाए। हाँ, देखो देखो आश्रय करके का अर्थ होता है, काल का आश्रय करके जो कथन करेंगे कितने काल तक, जैसे अभी हम ये सामायिक जिन्होंने व्रत अंगीकार किया है, अंतर्मुहूर्त तक, दो घड़ी तक, दो घड़ी सामायिक, तीनों काल करेंगे या फिर उसका काल बढ़ाएंगे, ये जो बातें होती है, तो उसको काल का आश्रय करके, और भी बताए ना, या अपने इच्छित समय के अनुसार। ऐसा नहीं वो तीन काल छोड़ के अभी हमको सामायिक तो करना था, अपन क्या करें, शाम को तो हमें टाइम नहीं है, ये बात नहीं है। यानी जिन्होंने वो प्रतिमाएं अंगीकार की, वो तो नियम रूप से उन तीनों ही काल में बैठते ही है। फिर भरतादि क्षेत्र सहनन और गुणस्थानों का आश्रय। क्षेत्र की अपेक्षा फिर अलग अलग वर्णन होगा, सहनन की अपेक्षा, जैसे अभी पांचवा काल है या चतुर्थ काल में भी हीन सहनन वाले होंगे, तो उनकी अपेक्षा से भी वहां कथन किया जाएगा, तो उसको कहते हैं सहनन की अपेक्षा। गुणस्थानों की अपेक्षा भी कहेंगे कि पांचवे वाले को, जिसने वो प्रतिमा धारण की, उसको तो नियम रूप से रोज होगा, ये भी बताए ना, दिन में होगा, फिर वो संधि काल जो पक्ष में होगा, मास में होगा, वो विशिष्ट सामायिक, वो भी होगा। देखो विशेषार्थ में आती बात, कभी सचित्तादि द्रव्य के निमित्त से, ये द्रव्य में लिया, यानी किसी द्रव्य के निमित्त से राग द्वेष होते हैं, तो सचित्तादि में सचित्त अचित्त मिश्र आदि सब लेना। सचित्त में जीवों के निमित्त से, अचित्त में अन्य द्रव्यों के निमित्त से, मिश्र में दोनों जो, कभी नगरादि के क्षेत्र के, नगरादि क्षेत्र के निमित्त से, और कभी वसंतादि काल के निमित्त से राग और द्वेष पैदा होता है, जिससे इस जीव की परिणति कभी राग द्वेष, राग रूप और कभी द्वेष रूप होती रहती है, जो आत्मा को संसार में रोके हुए है। ये राग द्वेष इसके निरंतर चल रहे हैं, और उसके लिए उसको निमित्त भी मिलते रहते, क्योंकि उसको, अतः इसके त्याग के लिए सामायिक की जाती है। परंतु लोग को सामायिक का गलत अर्थ लेते हैं ना, बस सामायिक लेके एक जगह बैठ जाना, वो सामायिक नहीं है। तो बैठकर अंतरंग की क्या क्रिया होती है उसका तो पता नहीं है, और उन्होंने तो मूल धारा में जो सामायिक की बात बताई थी, उसमें से वो खाली ऊपर की क्रिया ले ली और अंदर खोखलापन, तो उसको कहते, इसलिए उसका निषेध किया जाता है। एकांत में बैठकर तत्व विचार करना ये अच्छी बात है। अंतरंग क्रोधादि कषायों के उदय से, अंतरंग में क्रोधादि कषायों के उदय से, क्रोधादि कषायों के उदय से जब कहते हैं, तो कषाय कर्म समझना है, उदय लिखा है ना। और बहिरंग में सचित्त द्रव्यादि के निमित्त से, जो राग और द्वेष रूप परिणति होती है, ये परिणति में जीव की बात करनी, और कषायों का उदय जो लिखा है वो कर्म की बात है। यानी पुराने कर्म बंधे हुए अभी उदय में आ रहे हैं, उसके उदय के निमित्त से अंतरंग में, तो वो अंतरंग ने नियम रूप निमित्त, उसको अंतरंग कहेंगे। और फिर बाह्य में उस समय सामने कोई बच्चे पर हमने गुस्सा किया, तो वहां भी क्रोध कर्म का उदय तो है ही, हमें क्रोध आया वही बताता है कि यहाँ क्रोध कर्म का उदय चल रहा है, क्योंकि कर्म का उदय तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा या ऐसे भी उसको हम तो जान नहीं रहे, हम तो अनुमान के द्वारा जानेंगे ना, हमें अभी क्रोध आ रहा है, उसमें अंतरंग निमित्त वहां क्रोध नाम के कर्म का उदय चल रहा है। और उस समय बाह्य में भी अन्य कोई सचित्तादि द्रव्य, अन्य कोई द्रव्य का वहां उपस्थिति उसकी, हाँ, उसका त्याग करके आत्मधर्म समता आदि के साथ समरस को भाव, समरस भाव को प्राप्त होना सामायिक है। अने राग द्वेष का त्याग करके, ये समता या आत्मा का धर्म है ना, उसके साथ समरस भाव को प्राप्त होना सामायिक है। द्रव्य क्षेत्र और काल के भेद से तीन प्रकार की सामायिक निमित्त की प्रधान से कही गई है। मैं सर्व सावध्य से विरत हूं, सावध्य ने हिंसा। मैं सर्व सावध्य से विरत हूँ इस प्रकार के, यानी मैं सर्व हिंसा का त्याग करता हूँ इस प्रकार संकल्प पूर्वक होने वाली समता प्रधान भाव सामायिक सभी समीचीन सामायिकों में पाई जाती है। समीचीन यानी यथार्थ। जब सामायिक में बैठते हैं जैसे विधि पूर्वक, तो मैं सभी पापों का त्याग करता हूँ, हिंसा का त्याग करता हूँ, इस तरह से संकल्प भी किया जाता है, मुंह से वचन से बोला भी जाता है। आगम में सामायिक छेदोपस्थापना आदि पांच प्रकार का जो चारित्र बतलाया है, ये नाम मालूम है पांच प्रकार के? हाँ बोलो। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम, ये पांच प्रकार का चारित्र है। उनमें से यहां केवल सामायिक चारित्र का अर्थ सामायिक नहीं है। चारित्र के वे पांच भेद अवस्था विशेष की अपेक्षा किए गए हैं, अतः पांचों चारित्र सामायिक में अंतर्भूत हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये चारित्र कहो, समता कहो, एक ही बात है। चारित्रो खलु धम्मो का है ना, प्रवचन सार में भी सात्विक गाथा में वो साम्य भाव को ही चारित्र कहा है। वो जो सामायिक है तो वो एक प्रकार से कथन करना वो सामायिक हो जाएगा, या उसको हम एक में सब समा जाते हैं, और उसी को कथन की अपेक्षा से समझाना है तो पांच भेद करके समझाते हैं। चारित्र अलग अलग पांच प्रकार का नहीं, वो तो सामायिक ही है, सब चारित्र वो सामायिक स्वरूप ही है। नियत काल में, नियत काल यानी निश्चित काल में जो नमोकार आदि मंत्रों का जप किया जाता है, वह यदि राग और द्वेष के त्याग की मुख्यता से किया जाता है, उसका भी सामायिक में अंतर्भाव हो जाता है। देखो ये सामायिक पाठ भी बोलते हैं ना, उसमें नमोकार मंत्र भी कहेंगे, वो भगवान की स्तुति भी बोलेंगे, जो कुछ है, परंतु उसकी मुख्यता क्या है? राग द्वेष के त्याग की मुख्यता से किया जाता है तो, और फिर उसमें मान्यता भी सही होनी चाहिए, ये सब बातें तो उसमें है ही गर्भित। किंतु जो जप विद्या देवता आदि की सिद्धि के लिए किया जाता है वह सामायिक नहीं है। ऐसे भी विद्याएं प्राप्त की जाती है कि उसके लिए वो जप आदि किया जाता है, उसके लिए वो बैठकर ऐसे ये अभी आजकल के मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? रोग ठीक करने के लिए। उसको सामायिक कहना कि नहीं कहना? मैं शरीर हूं और मुझे ने शरीर को ने मुझे ठीक ठाक रहना है। तो ये जप आदि विद्याएं जो पहले हासिल की जाती है, जैसे रावण भी बैठा था ना, बहुरूपिणी विद्या हासिल करनी थी, वो शांतिनाथ जिनालय में जाके बैठा था, उसको तो कितने कितने अन्य लोगों ने आकर कितना उपद्रव भी किया उसको भी तप कहा। वो तो सच्चा तप नहीं है, उससे डिगाने के लिए बहुत कोशिश भी की गई, परंतु वो अडिग रहा और उसको विद्या प्राप्त हुई, परंतु उसका जो है वो तप कहो या जो कुछ है उसको सामायिक नहीं कहेंगे। वो भी आता है ना, वो तो लक्ष्मण गया और वहां वो शूर्पणखा का कौन हो? उसका नाम क्या था, रावण का बहन हुई नहीं, रावण के बहन का वो विद्या हासिल करने के लिए बैठा था और उसने जप के द्वारा वो विद्या हासिल की, वो खड़ग उसको प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मण वो जा रहा था तो उसने खड़ग तो वहां आकर उपस्थित हुआ, उसने उसको देखा ही नहीं था कि कोई वहां तप कर रहा है, तो उसने खड़ग देखा। तो ऐसे उसको जैसे हम कुछ देखते तो चला के देखते, तो वैसे उसने ऐसे वृक्षों पर चलाया तो अंदर बैठा था वो, तो मर गया वहां पर। हाँ नहीं, उसका नाम कुछ खरदूषण था। तो उसकी विद्या इसको प्राप्त हुई फिर, उसने तो तब भी नहीं किया। तो ये सामायिक नहीं, ये बताना चाहते हैं। ऐसे जो जपादि से जो विद्या प्राप्त करते हैं, क्योंकि उससे शुभ और अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती हुई देखी जाती है। तो शुभ कार्यों में प्रवृत्ति भी कुछ बात अच्छी नहीं है ना। मूल में जो परिमित और अपरिमित रूप से सामायिक बतलाई है, वहां परिमित का अर्थ नियत काल, निश्चित काल, और अपरिमित का अर्थ अनियत काल प्रतीत होता है। अच्छा, जिनका काल नियत है ऐसे स्वाध्याय आदि नियत काल सामायिक कहलाते हैं। ओ, स्वाध्याय को भी वहां नियत काल सामायिक कहा। और जिनका काल नियत नहीं है ऐसे इरियापद आदि अनियत काल सामायिक कहलाते हैं। ये मुनियों की अपेक्षा से ये सारे जो है ना 14 के 14 प्रकीर्णक है, वो मुनियों के क्रियाओं की अपेक्षा से खास बात है। उनको केवली की बात इरियापथ में, इरियापथ आश्रव है उनका, यहाँ सामायिक की बात चल रही है। नहीं, वो मुनियों के चलते हुए होगी शायद इरियापथ। सामायिक नाम के प्रकीर्णक में इस प्रकार सामायिक का कथन किया गया है, अतः उसका कथन स्वसमय वक्तव्य है। आगे शंका समाधान द्वारा चतुर्विंशति स्तव का स्वरूप बतलाते हैं। ये 2 नंबर का प्रकीर्णक है, चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति यानी 24, चतुर्विंशति स्तव यानी उनका स्तवन। शंका, 6 काय के जीवों की विराधना के कारणभूत श्रावक धर्म का उपदेश करने वाले होने से 2400 ही तीर्थंकर सावध्य अर्थात सदोष है। शंका ही चल रही है, ऐसे कौन पूछेगा। हाँ, आगे इसी विषय का स्पष्टीकरण करते हैं। दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 श्रावकों के धर्म हैं। यह चारों ही प्रकार का श्रावक धर्म 6 काय के जीवों की विराधना का कारण है, क्योंकि भोजन का पकाना, दूसरे से पकवाना, अग्नि का सुलगाना, अग्नि का जलाना, अग्नि का खूतना खुतवाना आदि व्यापारों से होने वाली जीव विराधना के बिना दान नहीं बन सकता। मुनियों को भी आहार दान करना, तो श्रावक स्वयं के लिए भी ये सब बातें, भोजन पकाना आदि क्रियाएं करते हैं, तो उसमें हिंसा तो होती है, तो उसके बिना दान नहीं बन सकता। उसी प्रकार वृक्ष का काटना कटवाना, ईंटों का गिराना और गिरवाना तथा उनको पकाना और पकवाना आदि 6 काय के जीवों की विराधना के कारणभूत व्यापार के बिना जिन भवन का निर्माण करना अथवा करवाना नहीं बन सकता। अभी आजकल की जो सीमेंट आदि की बातें करेंगे, उसमें भी जीवों की विराधना तो होती है। तथा प्रक्षाल करना, अवलेप करना, सम्मार्जन करना, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना और धूप का जलाना आदि जीव वध के अविनाभावी व्यापारों के बिना पूजा करना नहीं बन सकता। हाँ, वो तभी से है 20 पंथ, ये तो पहले से सदियों से चली आ गई पद्धति है ना। प्रतिशंका, शील का रक्षण करना सावध्य कैसे है? शंकाकार की तो ये शंका है, तो आचार्य उसको बता पूछ रहे, आपने दान की बात करी, पूजा की बताई, तो कहते हैं शील और उपवास में, शील में कैसे हिंसा होती है, शील का रक्षण करना सावध्य कैसे है? शंकाकार, नहीं, क्योंकि अपनी स्त्री को पीड़ा दिए बिना शील का परिपालन नहीं हो सकता, इसलिए शील की रक्षा करना भी सावध्य है। यानी परस्त्री सेवन का त्याग आदि की अपेक्षा से यहाँ बताया। प्रतिशंका, उपवास सावध्य कैसे है? उपवास में तो ना भोजन करना है ना करवाना है कुछ है, उसमें हिंसा कैसी होती है? शंकाकार कहते हैं नहीं, क्योंकि अपने पेट में स्थित प्राणियों को पीड़ा दिए बिना उपवास नहीं बन सकता, इसलिए उपवास करना भी सावध्य है। ये मराठी में कावड़े उड़ते हैं, हिंदी वालों के चूहे दौड़ते हैं। गुजराती वालों के क्या होता है, भूख लगती है तो क्या कहते हैं, उंदरड़ा। अच्छा। अथवा सुबह याद कर रहे थे ना पशु पक्षियों को। अथवा स्थावर जीवों को छोड़कर केवल त्रस जीवों को ही मत मारो। श्रावकों को इस प्रकार का उपदेश देने से जिन देव निरवध्य नहीं हो सकते, ये सब शंकाकार की शंकाएं चल रही है। अथवा अनशन अवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन वृक्ष के मूल में सूर्य के आतप में और खुले हुए स्थान में निवास करना, ये सारी किन की बातें हैं? ये तपों के नाम है ना, बाह्य तप। हाँ, ये आगे हाँ काय क्लेश में ही जाते हैं। वृक्ष के मूल में सूर्य के आतप में, आतप है ना, धूप में, खुले हुए स्थान में निवास करना, उत्कुटासन, पल्यंकासन, अर्ध पल्यंकासन, पल्यंकासन है पद्मासन, ये उसके अलग अलग नाम है, खड़गासन, गवासन, गवासन है गाय जैसे बैठती है दोनों पैर ऐसे मुड़कर वैसे बैठना, उसको गवासन कहते हैं। वीरासन तो पता होगा, घुटनों पर बैठते हैं, वीरासन नहीं मालूम है? नहीं मालूम। ये सब आसन अलग अलग बताए। विनय वैयावृत्य स्वाध्याय और ध्यान आदि के निमित्त से होने वाले क्लेशों में जीवों को डालकर, एक काय क्लेश एक जीवों को क्लेश देना ऐसा समझता है शंका का, उन्हें ठगने के कारण भी, ओहो जीन निरवध्य नहीं है और इसलिए वे वंदनीय नहीं है। उस जमाने में ऐसे कोई प्रश्नकर्ता भी होंगे उनके सामने, इसलिए आचार्यों ने स्वयं ऐसा प्रश्न उठाया है। उसका समाधान यहाँ पर पूर्वोक्त शंका का परिहार करते हैं। परिहार कल देखना है, अच्छा बड़ा है, हाँ कल तक शंका ध्यान में रखना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अश्विन भाई।